हरे कृष्णा। ये बहुत पवित्र स्थान है विश्राम घाट। गौड़ीय वैष्णव अक्सर यहां से ब्रज की यात्रा को शुरू करते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी जब ब्रज में आए थे तो यहां पर आए थे। यहां पर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया था, तो हम भी यहां से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण प्रार्थना के द्वारा श्री गुरु श्री प्रभुपाद और सारे पूर्वज आचार्यों की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग साथ में बोलिए, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुधाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौरार्विर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जना प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंदा मतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादौ श्रीमाद रत्नागर सिंहासनस्थौ शिशिराधा शिल गोविंद देवो पृष्ठलाभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षन वेणु स्वनेर्गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सब उपस्थित वैष्णवों को प्रणाम करके उन सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। ये कार्तिक का पवित्र महीना है और ये महीना जो है इसको दामोदर महीना भी कहते हैं। ये श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है और इसीलिए ये भक्ति वर्धक है, भक्ति को बढ़ाने वाला है। ये वैष्णवों में परंपरा है कि इस महीने में भक्तगण उन स्थानों में जाना चाहते हैं जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी पवित्र लीलाएं किए हैं। तो यहां पर विशेष करके ये स्थान जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, विश्राम घाट, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी यहां पर आए थे। और ये वैष्णव में परंपरा है कि ब्रजमंडल में परिक्रमा शुरू करने से पहले यहां पर आकर यमुना में स्नान करके और पवित्र होकर हम ब्रजधाम में प्रवेश करते हैं। तो मैं अपने आप को अयोग्य समझता हूं और मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, जिसके द्वारा जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से मैंने सुना है और जो श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं से पढ़ा है, उसको मैं आपको दोहराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ब्रजमंडल, ये वृंदावन धाम, ये बहुत ही ऊंचा स्थान है और मेरे से बद्ध जीव के लिए उस महिमा का गुणगान करना संभव नहीं है, परंतु मैं आप सबका और गुरुदेव का, श्रील प्रभुपाद का और जो ब्रज के जो 6 गोस्वामी हैं, हमारे पूर्वज आचार्य हैं, उन सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। जैसे कि कृष्णदास कविराज नरोत्तम दास ठाकुर भजन में बोलते हैं, इच्छाई गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां हुई थे विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। कि ये 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इनके स्मरण करने से ही और इनके आशीर्वाद से ही सारे विघ्न जो है वो दूर हो जाते हैं। तो मैं फिर से गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद और समस्त वैष्णवों का आशीर्वाद चाहता हूँ और आप सब वैष्णवों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं एक छोटे बालक के समान हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेष करके मेरे वरिष्ठ गुरु भाई जो यहाँ पर हैं, इसके श्रीमान सनत कुमार प्रभु जी और इसके गौरंग प्रभु जी और इसके मदन गोपाल प्रभु जी और भी अनेक वैष्णव, सबके चरणों में प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं इस सेवा को इस तरीके से कर सकूं जिससे कि मेरा हृदय पवित्र हो जाए। आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हृदय को पवित्र बनाना और हम इसीलिए यहां पर आए हैं। मानव जीवन बहुत कम समय के लिए है, ज्यादा से ज्यादा 80-90 वर्ष। प्रहलाद महाराज बताते हैं उसमें भी शुरुआत के कई वर्ष बचपन में बीत जाते हैं अबोध अवस्था में, और आखिरी वर्षों में भी शरीर जीर्ण हो जाता है और कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारी आयु बहुत छोटी है और पल पल हम मृत्यु के करीब आ रहे हैं। कुछ ही करीब 3-4 हफ्ते पहले हमारे बंबई के निगड़ी आश्रम से एक भक्त यमुनापति प्रभु, उन्होंने उनकी उम्र सिर्फ 29 वर्ष थी और आप सब, आप में से अधिकांश भक्त जानते हैं कि कोई बीमारी होने के कारण, लिवर सोरस होने के कारण उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो मैं सोच रहा था कि हम कई बार सोचते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति का अनुशीलन बाद में कर सकता हूं, परंतु वास्तव में कोई गारंटी नहीं है कि हम कितने समय रहेंगे। आयु बहुत छोटी है, इसीलिए इस छोटी सी आयु में अगर हम जो परम फल है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त कर सके तो जीवन की सफलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम को जागृत करना। उस प्रेम को जागृत करने की सरल विधि है कृष्ण के गुणों का श्रवण करना, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला का श्रवण करना और उसका कीर्तन करना। तो हमारी यात्रा का उद्देश्य वास्तव में यह है कि श्रवण और कीर्तन के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध बनाए और शुद्ध बनाकर भगवान के लिए एक योग्य स्थान बना सके। आप में से कई भक्त अनेक स्थानों से आए हैं, कष्ट लेकर, पैसे खर्च कर, सिर्फ इसी उद्देश्य से कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित कर सके। हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, 5 दिन हम अनेक स्थान जाएंगे, जैसे आज हम यहाँ पर आए मथुरा में, और कल बरसाना, और फिर उसके बाद नंदग्राम, उसके बाद वृंदावन और गोवर्धन, और उसके बाद 2 दिन फिर वृंदावन में। तो ये हमारे पास थोड़ा समय है, इसका उद्देश्य यही है कि हम श्रवण और कीर्तन के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध बना सके। एक एक पल पल का उपयोग भगवान कृष्ण की श्रवण और कीर्तन में लगाना है और कोई प्रजल्प नहीं। जैसे श्री राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जब हम यात्रा में होते हैं तो हमें हरेक क्षण का उपयोग भगवान की सेवा में करना है, और ये भावना रखनी है कि कैसे मैं वैष्णवों को प्रसन्न कर सकूं। ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल तरीका है, क्योंकि भक्तों को प्रसन्न करना, इस भावना में रहना जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, गोपीर भरतूर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं कृष्ण के, जो गोपियों के स्वामी कृष्ण हैं, उनके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूं। मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है, बस मैं वैष्णव का सेवक बनूं और हमेशा कृष्ण का नाम ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महाराज प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप कौन हैं, जगन्नाथपुरी में महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा कर रहे थे, छिप कर, वेश बदल कर, और जब भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, तो राजा ने यही जवाब दिया, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास भृत्येर भृत्यकोर एई मोर आश। ये भगवान, मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि मैं आपके सेवकों का सेवक बन सकूं। ध्रुव महाराज, उन्होंने भी यही वरदान मांगा कि मैं दासों के दासों का दास बन सकूं। श्रीधर खोला वेचा को जब गौरंग महाप्रभु ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, श्रीधर खोला वेचा ने यही मांगा कि मैं आपके दासों का दास बन सकूं। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अष्ट सिद्धि प्रदान करने के लिए तैयार थे, परंतु श्रीधर खोलावेचा ने यह स्वीकार नहीं किया। हमारी एक ही अभिलाषा है जो श्री गौरंग महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भगवान, मैं कोई भौतिक चीज नहीं चाहता, धन अनुयायी स्त्री मान सम्मान, मैं ये सब नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी सेवा में लगा रहूं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कृष्ण की सेवा करना, दास दासों के दास बनकर। महाराज कुलशेखर भी अपने मुकुंदमाला स्तोत्रों में इस तरह बताते हैं, तब भृत्येर भृत्येर भृत्य भृत्य 8 बार से बताते हैं कि मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूं। तो इस यात्रा के दौरान हमारी यही भावना होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं वैष्णवों को और श्री गुरु को प्रसन्न कर सकूं। जीवन की सफलता इसी में है, संसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, और भक्तों के माध्यम से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत आसान है। तो मैं इस यात्रा के दौरान श्री राधानाथ स्वामी महाराज ने जो पिछले 2-3 यात्राओं में जो प्रवचन दिए हैं, उसका सारांश में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रज धाम के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रज धाम है यहां पर किस भावना से प्रवेश करना है। बड़े बड़े संत और भक्त भी यहां पर आने की अभिलाषा रखते हैं। श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि आप ब्रज धाम में सिर्फ कोई रेलवे टिकट या कोई प्लेन टिकट खरीद कर नहीं पहुंच सकते। ये जो ब्रज धाम है ये उन लोगों के लिए है जो भिक्षुक भावना में है। हम सब भिक्षुक बनने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में और उन वैष्णव के चरणों में जिन्होंने की श्रीमती राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। हमें यह भिक्षा मांगनी है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्याम सुंदर, मुझे अपने चरणों में अनुराग दो, मुझे सच्ची नम्रता दो और मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दो जिससे कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। ये जो पवित्र धाम है उसके बारे में कुछ शब्द मैं कहना चाहूंगा। ब्रजमंडल ये गोलोक वृंदावन का ही एक रूप है। जब भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब भगवान प्रकट होते हैं और उनके आने से पहले उनका धाम यहाँ पर प्रकट होता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गोलोक वृंदावन एंड द वृंदावन विच इज मैनिफेस्टेड ऑन दिस अर्थ। जो गोलोक वृंदावन है और ये जो भौम वृंदावन है उसमें कोई अंतर नहीं है। फर्क यही है कि यहां पर भगवान की लीला जो है कभी कभी प्रकट रूप से होती है और कभी कभी अप्रकट रूप से होती है। 5000 साल पहले जब भगवान नंदनंदन कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए लीला की, तब उनकी लीलाएं प्रकट थी और इस समय भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो अप्रकट रूप से हमेशा चल रही होते हैं। जब हम हृदय से शुद्ध होते हैं तब हम वास्तव में भगवान के धाम को और इन लीलाओं को देख सकते हैं, और इस समय जब हमारी अवस्था अशुद्ध है तब हम श्री गुरु और वैष्णव के मुख से श्रवण करके इन लीलाओं को जान सकते हैं। श्रवण की विधि है वो हृदय को शुद्ध बनाने वाली है और विषय भावना से मुक्त करने वाली है। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, विषय छाड़ी या कबे शुद्ध हबे मन, तबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। जब मेरा मन विषयों की भावना से मुक्त हो जाएगा, जब मेरे अंदर कोई इंद्र तृप्ति के विचार नहीं रहेंगे, तब मैं श्री वृंदावन धाम को देख सकूंगा। वृंदावन धाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। जैसे नाम के प्रति अपराध हो सकते हैं, वैसे धाम के प्रति भी अपराध होते हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। इस कार्तिक के महीने में जो भी भक्ति के अभ्यास हम करते हैं उसका कई गुना ज्यादा 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। कोई भी भक्ति की क्रिया अगर आप विश्व के किसी दूसरे स्थान में करते हो, अगर आप वृंदावन में करते हो तो उसका लाभ 100 गुना ज्यादा होता है, और अगर वही क्रिया अगर आप कार्तिक के महीने में करते हो तो और 100 गुना ज्यादा लाभ होता है, परंतु साथ साथ अपराध भी 100 गुना ज्यादा फल मिलता है, पेनल्टी भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए भक्त को बहुत सावधानी से रहना चाहिए ये धाम में। मैं अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूं, वैसे आप में से अधिकांश भक्त जानते ही होंगे कि इस धाम में जो भी प्राणी होते हैं, जो भी, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या कीट हो या मानव हो, इन सबको आदर, विशेष आदर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कौन है। कई बार बड़े बड़े भक्त भी अगर भक्ति के मार्ग से कभी गिर जाते हैं तो उनको एक आखिरी जन्म ब्रज में किसी पशु के रूप में दिया जाता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं, और वो उनके लिए आखिरी जन्म होता है जिससे फिर वापस भगवत धाम गोलोक वृंदावन लौट सकते हैं। जब हम धाम में रहते हैं तो बड़े आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए सब भक्तों के प्रति, विशेष करके ब्रजवासियों के प्रति, क्योंकि जो भी ब्रज में जन्म लिए हैं या ब्रज में रह रहे हैं वो भगवान को बहुत 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 प्रिय हैं और हमें उनका उस तरीके से आदर करना चाहिए। ये भौतिक जगत से परे हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये पृथ्वी लोक है, भूलोक, इसके ऊपर स्वर्ग लोक, उसके ऊपर जन लोक, फिर तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक। तो ये ब्रह्म लोक तक जो है भौतिक ब्रह्मांड है, और इससे परे विरजा नदी के परे वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम के भी परे कृष्ण लोक है, जिसके तीन भाग हैं, एक है मथुरा, दूसरा है द्वारका और तीसरा है श्री वृंदावन धाम। भगवान श्री कृष्ण जो है ये तीनों धाम में लीला करते हैं, और उनकी सबसे मधुर लीलाएं जो हैं वो श्री वृंदावन धाम में पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ सबसे घनिष्ठ लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक बार प्रकट होते हैं, अर्थात सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये चार युगों का जो चक्र है, ऐसे जब 1000 चक्र हो जाते हैं उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने से पहले जब वो श्रीमती राधा रानी को बताते हैं, तब श्रीमती राधा रानी बताते हैं कि मैं तभी आपके साथ धरती पर आऊंगी जब गोवर्धन पर्वत, वृंदावन धाम और यमुना नदी होगी। अब भगवान कृष्ण को बताते हैं कि ये तीनों चीजें पहले से ही प्रकट हो चुके हैं, और फिर श्रीमती राधा रानी और अपने पार्षदों के साथ भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा जो कि यमुना के बारे में है, क्योंकि हम यहाँ यमुना के किनारे बैठे हैं, ये बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। यमुना के गुणगान में कहा जाता है कि जब कोई हवा चलती है और जब वो हवा यमुना के ऊपर से चलकर किसी को स्पर्श करती है, तो हवा के स्पर्श से व्यक्ति को कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये यहाँ पर यमुना के तट पर बैठने का लाभ है, और अगर जागते हुए बैठे तो और भी अच्छा है। यमुना के बारे में एक सुंदर कथा जो मैं बता रहा था कि एक बार जो सूर्यदेव जो हैं, वो उनकी जो शक्ति है या जो उनकी पत्नी है, संध्या से संग करने आते हैं, और आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है, जब सूर्य अपनी प्रकाश से संग करने आता है तो उसके उसके प्रकाश के, उसके तेज के प्रभाव से संध्या की आंखें बंद हो जाते हैं। और तब बताया जाता है कि उनको कि क्योंकि संध्या की आंखें बंद थे तो उनको एक पुत्र होगा, परंतु ये पुत्र ऐसा होगा कि इसको देख के सब लोग आंखें बंद कर देंगे डर के मारे। तो ये सुनकर फिर सूर्य सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छा पुत्र नहीं है। तब उनको बाद में बताया जाता है कि आपको एक पुत्री होगी, और जो उस पुत्री के जल में स्नान करेगा तो उसको आपके पुत्र के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। तो पुत्री जो है वो यमुना होती है, और पुत्र जो है यमराज होते हैं। तो यमुना के जल में स्नान करने से यमराज का भय नहीं रहता। जैसे आप सब वैष्णव हैं, आप हरि नाम ले रहे हैं, इसलिए आपका यमराज से ज्यादा संपर्क नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी ये महिमा का यहाँ पर गान किया जाता है। यमुना देवी के बहुत सुंदर अष्टकम है, यमुना अष्टकम, आप सब भक्त जब कभी समय मिले आप पढ़े वृंदावन यात्रा के दौरान, कैसे यमुना मैया जो है इसको अरविंद बंधु नंदिनी कहते हैं, जो सूर्य की पुत्री है, और वो इस धाम पर भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बताते हैं कि ये जो गोकुल वृंदावन है, जो ब्रज धाम है, और जो गोलोक वृंदावन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, और यहाँ पर धाम में जो हर एक चीज है वो चेतना युक्त है, यहाँ पर कोई चीज जड़ नहीं है। इस धाम में हर पशु पक्षी और पेड़, इसका एक ही इच्छा है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम जी की लीला में, ब्रज वृंदावन लीला में बताया जाता है कि ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ भी बड़े ऋषि मुनि हैं, जो पक्षी हैं वो भी बड़े भक्त हैं, जो कि भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रज भूमि की जो धूल है ये भी बहुत पूजनीय है, जैसे यहाँ पर ब्रज में कहावत कहा जाता है, ब्रज की धूल की कामना करे शिव शेष, कि ब्रज की जो धूल होती है उसकी भी प्राप्त करने की इच्छा शिव जी और ब्रह्मा जी और अनंत शेष भी प्राप्त करना चाहते हैं। अब सब जानते हैं कि बरसाना में जहां पर हम लोग कल जाएंगे अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई तो वहां पर ब्रह्मा जी स्वयं एक पर्वत के रूप में प्रकट हुए जिससे कि उनको भगवान के चरणों की धूल मिल सके, और ऐसे ही शिव जी प्रकट हुए नंदीश्वर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो धूल है वो भी बहुत पूजनीय है। यहाँ की धूल जो है वो वैकुंठ लोकों की सारी संपत्ति से भी ज्यादा है। सारे वैकुंठ लोक जो हैं वो धूल के एक कण में समा सकते हैं, इतनी धूल की महिमा है। आप जहाँ रह रहे हैं फोगला आश्रम वृंदावन का ही भाग है, आप समझ सकते हैं कि एक एक धूल की क्या कीमत है। और साथ साथ जो धूल है वो एक भगवान का एक अंश है जो कि जानबूझकर अपने आप को इस रूप में प्रकट हुए हैं जिससे भगवान कृष्ण अपने चरण कमल उन पर रख सके। ब्रज में जितने भी पेड़ हैं सब कल्प वृक्ष हैं, अर्थात वो सब के सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। दीनबंधु प्रभु एक कहानी बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ब्रज में आए और सोचने लगे कि मैंने सुना है कि यहाँ पर ब्रज में सब वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में कल्प वृक्ष हैं। तो वो इच्छा कर रहे थे ऐसे, उनको भूख लगी थी तो सोच रहे थे कि मुझे कुछ खाने के लिए अच्छा बढ़िया प्रसाद मिल जाए, तो उन्हें अच्छा पूरी सब्जी प्रसाद मिल गया। फिर सोचने लगे मुझे कुछ मिठाई मिल जाए, तो उन्हें कुछ मिठाई भी मिल गई। और फिर वो थोड़ा विश्राम करने लगे और सपने में सोचने लगे कि शायद कोई शेर आ गया, और सही में शेर आ गया और उनका अंत हो गया। तो कृपया बहुत सावधान रहना आप क्या इच्छा करते हैं यहाँ पर, और बेस्ट इच्छा वही है जो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, हमें जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्ति रहित। ये यात्रा के दौरान और जब भी आप बाद में भी वृंदावन आते हैं, हमें अपने जप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही जीवन का लक्ष्य है। अब मैं बस में आ रहा था और मेरे साथ गौरंग प्रभु जी बैठे थे और वो जप कर रहे थे, उनका 16 माला हो गया था, वो जप करते जा रहे थे। तो वो मुझे सिखा रहे थे अपने उदाहरण से कि व्यक्ति को एक एक क्षण का उपयोग हरि नाम में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कृष्ण की लीला सुनना बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है और सुनना भी चाहिए, लेकिन जब तक हम नाम का आश्रय नहीं लेते तो लीलाओं का सुनना जो है ये काल्पनिक चीज रहेगा हमारे लिए, इसका रियलाइजेशन नहीं होगा। इसे कई लोग कृष्ण लीला सुनते हैं और कई लोग कृष्ण लीला गाते हैं, उनके आंखों में आंसू भी आते हैं लेकिन हृदय नहीं बदलता, रोना आता है हंसना आता है फिर घर चले जाते हैं। लेकिन हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि हम हृदय को शुद्ध बनाए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कबे हबे बोलो से दिन अमार, अपराध गुची शुद्ध नाम रुचि, कृपा बल हबे हृदय संचार। कि वो दिन कब आएगा जब मेरा हृदय शुद्ध होगा। सब कुछ अभिलाषा के ऊपर है, ये धाम भी जो है हर व्यक्ति की अभिलाषा को पूरी करता है। तो अगर हम धाम में इस उद्देश्य से आते हैं कि चलो थोड़े दिन विश्राम करेंगे, थोड़े दिन ड्यूटी से घर के कर्तव्य से दूर रहेंगे, तो वो इच्छा प्राप्ति हो जाएगी। परंतु यदि हम इस उद्देश्य से आते हैं कि मैं अपने हृदय को शुद्ध बनाना चाहता हूँ, एक बार जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि वो दिन कब आएगा जब मैं कृष्ण नाम लेते कोरिते श्री कृष्ण नामा उच्चारण पुलकित देह गदगद वचन, वो दिन कब आएगा जब मेरे आंखों से आंसू आने लगेंगे और मैं सच्चे दिल से राधा और कृष्ण को पुकारते हुए प्रेम से गाऊंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्त को ऐसी अभिलाषा करनी चाहिए, लालसा करनी चाहिए, कि आशा के विरुद्ध आशा करना कि किसी न किसी दिन मेरे ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा होगी। श्रीमती राधा रानी बहुत दयालु हैं, हम सब श्रीमती राधा रानी की कृपा मांगने के लिए आए हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं अगर आप कृष्ण के पास जाते हैं और अगर कृपा मांगते हैं तो शायद कृष्ण नहीं देंगे, क्योंकि हम सब बदमाश हैं, इस धरती पर आना ही ये मतलब ये पापपूर्ण इच्छा के कारण हम आते हैं। लेकिन अगर हम श्रीमती राधा रानी से निवेदन करते हैं, करुणा करु मई करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित, करुणा करु मई करुणा करु दयामयी राधे कृपामयी राधे, हे राधा रानी हे राधा रानी राधा रानी, तो हम भीख मांगते हैं रोते रोते के चरणों में भीख मांगते हैं, तब हमें राधा रानी कृष्ण से प्रार्थना करती है कि ये बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, मेरे से भी अच्छा है। जब राधा रानी कहते हैं कृष्ण से कि आप अच्छे भक्त हैं, तो कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं चाहे बदमाश भी हो। कृष्ण राधा रानी को मना नहीं कर सकते। रियली सब कुछ भावना पर होता है। कोई व्यक्ति बहुत प्रवचन कर सकता है और बहुत बोल भी सकता है, लेकिन उसका क्या लाभ यदि हृदय शुद्ध नहीं होता। हृदय शुद्धिकरण ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हर क्षण हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। पता नहीं कितने समय हम रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है मेरी आखिरी यात्रा हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो सकता है मेरा आखिरी घंटा हो सकता है मेरा आखिरी प्रवचन हो सकता है आखिरी श्वास हो। हर मोती पे इस तरह से पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रवचन में एक पॉइंट बताते हैं कि अगर आप धाम को देखना चाहते हो तो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए जो कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु। प्रेम का अंजन होना चाहिए। हालांकि धाम में भगवान की लीला हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है उनकी आंखों के सामने एक माया का पर्दा होता है, और जिस पर्दे के कारण वो लीलाओं को सही रूप में नहीं देख सकते। इसीलिए हम हमेशा श्री गुरु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करो, गुरु की कृपा से वृंदावन को देख सकते हैं। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या योग्यता है कि हम धाम को देख सकें, और प्रवचन करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम हमेशा गुरु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में, पूर्वज आचार्य के चरणों में भिक्षा मांगते हैं कि आप मुझ पर कृपा करो, आपकी कृपा से ही ये धाम प्रकट हो सकता है। सारे तीर्थ जो हैं ये ब्रजमंडल में हैं। एक बार ऐसी कहानी बताई गई है कि भगवान कृष्ण प्रयाग को तीर्थराज घोषित करते हैं सारे तीर्थों के राजा के रूप में, और उनका एक राज्याभिषेक समारोह होता है जहां पर सारे तीर्थों को बुलाया जाता है, और उस समारोह में सब तीर्थ आकर प्रयागराज को तीर्थराज के रूप में घोषित करते हैं, उनका अभिवादन किया जाता है। तो अगले दिन प्रयागराज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि सारे तीर्थ आए लेकिन वृंदावन धाम नहीं आए, वृंदावन धाम नहीं आए, क्या कारण है? तो भगवान कृष्ण बोले कि मैंने आपको तीर्थराज घोषित किया है लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ये वृंदावन धाम जो है ये मेरा घर है। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे ऐसा कि बॉम्बे इज माई ऑफिस, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप एंड वृंदावन इज माई होम। ये ब्रजमंडल है ये प्रभुपाद जी का घर है, और जो दादाजी का घर है वो पोते का भी घर है। वास्तव में किराया नहीं होना चाहिए रहने के लिए। लेकिन हरे कृष्णा, शायद टाइम की बात है, अभी देवामृत प्रभु प्रेसिडेंट ने तो ऐसे भी समय आ जाएगा कि वो बहुत अच्छा ऐसे भी कृपा होगी कि सब भक्त यहाँ आ सके। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर कार्तिक में भक्तगण आए, और यहाँ पे आने से भी बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पे शास्त्र ने बताया कि अगर आप 3 दिन के लिए भी वृंदावन धाम में आते हैं तो आपको जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अगर धाम में आकर कोई साधना नहीं भी करता, सिर्फ यहाँ आने से, यहाँ की हवा से, यमुना के स्नान से और यहाँ के प्रसाद से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो बहुत बहुत महिमा है। प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमा अमृत में बहुत इसका गुणगान करते हैं कि अगर कोई गलती से भी न जानते हुए वृंदावन के किसी एक पेड़ को प्रणाम भी करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये उसका महिमा बताई गई है। यहाँ पर श्रीपद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि ब्रज की जो सुंदरता है वो असीमित है, क्योंकि ब्रज में हर एक पेड़ हर एक पक्षी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, और क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सुंदर बन रहे हैं, इसलिए उनकी सुंदरता भी कृष्ण की तरह हमेशा बढ़ती रहती है। यहाँ पर जो भंवरे हैं वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, पक्षी कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, मोर कृष्ण के लिए नृत्य कर रहे हैं और बंदर भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। और अंत में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना चाहूंगा। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की ब्रज यात्रा का वर्णन किया गया है। वृंदावन कितना प्रिय है हम सब गौड़ीय वैष्णव के लिए, हम इनसे जान सकते हैं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने की बहुत तीव्र इच्छा रखते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए और गया में अपने गुरुदेव से मिले श्री ईश्वरपुरी से, और उनका हृदय भारे दृष्टि से परिवर्तित हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, लेकिन बाद में वो कृष्ण के भक्ति के लक्षण दिखाने लगे। तो जैसे ही वो गया से वापस लौटे, रास्ते में पुकारने लगे, वृंदावन वृंदावन, कृष्ण कृष्ण मथुरा, राधे 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 राधे, पुकारने लगे। सब लोग बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जब इस तरह वो पुकारने लगे और वो सीधे वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, वो नवदीप नहीं जा रहे थे, सीधे वृंदावन। और उस समय उनको एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी और सारे देवता बताने लगे, हे भगवान, आपका ये अवतार जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए हुआ है। यदि आप अभी वृंदावन चले जाओगे तो कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे होगा। अब आप वापस नवदीप लौटिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए, और फिर समय आने पर आप वृंदावन जाना। हम सब आपके सेवक हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है आपको आपके उद्देश्य के बारे में बताना। आप जैसा चाहे कर सकते हैं। और इस तरह से देवताओं की बात को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु वापस नवदीप लौटे। नवदीप में गदाधर और मुकुंद संजय और श्रीवास आंगन में वो अपने प्रेम की अवस्थाओं के बारे में बताने लगे, और वो इस तरह से कृष्ण प्रेम में मग्न हो गए। बाद में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने हेतु उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया, और संन्यास लेने के लिए वो केशव भारती के पास गए। केशव भारती से संन्यास लेने के बाद वो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे और वो कहने लगे, अब हम वृंदावन जाएंगे। वो तुरंत वृंदावन की ओर निकल पड़े, परंतु रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनको धोखा देकर शांतिपुर की ओर भेज दिया। शांतिपुर में अपनी माता से मिले, और उसके बाद अपनी माता की आज्ञा से माता से कहने लगे, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन मुझे जाना है, परंतु मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, आप जैसे आपकी इच्छा हो। चची देवी बताने लगे, अगर आप वृंदावन जाएंगे तो, क्योंकि वृंदावन बहुत दूर है और उस जमाने में कोई टेलीफोन्स या ईमेल सिस्टम नहीं होता था, तो शशि माता कहने लगी, मुझे कुछ समाचार नहीं मिलेगा आपके बारे में। इसलिए वही कृष्ण जो वृंदावन में है वो जगन्नाथपुरी में भी निवास कर रहे हैं, इसलिए आप जगन्नाथपुरी में रहिए। अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री गौरंग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे, परंतु उनका मन हमेशा वृंदावन की ओर रहता। वो भक्तों से बार बार अनुमति मांगने लगे, और सब भक्त कहते, अभी नहीं, इसके बाद जाना, जन्माष्टमी के बाद जाना, डोल यात्रा के बाद जाना, शरद पूर्णिमा के बाद जाना, रथ यात्रा के बाद जाना। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूं, आप अनुमति दीजिए। और फिर महाप्रभु निकल पड़े। पहली बार जब वो गए तो वो रामकेली तक पहुंचे, और वहां पर श्री रूप और सनातन से मिलकर सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा कि आप अगर इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन जाएंगे तो लोग सोचेंगे आप कोई जादूगर हैं, इसलिए आप अकेले जाना। महाप्रभु वहीं से वापस जगन्नाथपुरी लौट आए, लेकिन उनका मन फिर भी वृंदावन जाने के लिए था। और अंत में द्वितीय बार, अगली बार वो झारखंड जंगल से गुजरते हुए बलभद्र भट्टाचार्य के साथ वृंदावन धाम में प्रवेश करने लगे। श्रील कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, जब वृंदावन के बारे में सोचते तो उनकी जो भाव है वो हजार गुना ज्यादा बढ़ जाता, और जब वो मथुरा में प्रवेश किए तो उनका भाव और हजार गुना बढ़ गया, और जब वो वृंदावन के द्वादश वनों में भ्रमण करने लगे तो उनका भावनाएं और अनंत गुना बढ़ गए। कार्तिक महीने जो अभी मास चल रहा है, उसी महीने के पूर्णिमा के दिन जो इस बार 16 नवंबर को है, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए और 2 महीने तक यहीं पर वृंदावन में रहे। हम जब वृंदावन में जाएंगे तो स्थान देखेंगे जहां पर चैतन्य महाप्रभु रहे थे, लेकिन उनका प्रवेश मथुरा से हुआ, विश्राम घाट से ही हुआ और उसके बाद भक्तों के निवेदन से वो वापस लौट कर आए। तो कुछ समय के लिए वृंदावन को सब लोग भूल गए थे और चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को भेजा और उनसे कहा कि आप कृष्ण की लीला स्थली को खोज निकालो, जहां पर भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं उनको खोजो और मंदिरों का निर्माण करो। आज जो हम वृंदावन देखते हैं वो वास्तव में रूप और सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का देन है। ये हमारी परंपरा है। नित्यानंद प्रभु यहां पर आए थे, माधवेंद्रपुरी यहां पर आए थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए थे और सब यहाँ पर विश्राम घाट भी आए थे, ब्रजमंडल में रहे थे। शे गोस्वामी वन वन में भ्रमण करते, उससे पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वो भी यहाँ पर आए थे और हम सब इनके पदचिन्हों में चलना चाहते हैं। हमें रास्ता नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम उन व्यक्तियों के पीछे चल रहे हैं जिनको रास्ता पता है तो हम रास्ते को जान सकते हैं। महाजन ये न गत सपंत। तो आज हम श्रील प्रभुपाद और सारे पूर्वज आचार्यों के पदचिन्हों में चलते हुए यहाँ पर आए हैं विश्राम घाट में और हम यहाँ पर भिक्षा मांग रहे हैं गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से, यमुना माई से, राधा और कृष्ण से, गौर निताई से, कृष्ण बलराम से कि हम हमारा हृदय जो है शुद्ध हो सके, हम अपने अनर्थों से मुक्त हो सके और भगवान के नाम को पवित्र हृदय से गा सकें और अपने आप को पवित्र बना सकें और अपनी योग्यता के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को सबको बांट सके। सब लोग दो मिनट आंख बंद करके प्रार्थना अर्पण करें भगवान से। हरे कृष्ण। महीने में स्नान करने की बहुत महिमा बताई गई है। श्री गुरु और श्री प्रभुपाद के चरणों को याद करते हुए हम स्नान करना चाहेंगे। ऐसा है कि हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि इसके बाद हमें आदि वराह और श्वेत वराह मंदिर के दर्शन के लिए जाना है। ये प्राचीन विग्रह हैं जो कि सत्युग के समय के, श्वेत वराह और आदि वराह मंदिर, और ये मंदिरों का दर्शन बहुत जल्दी ही बंद होने वाला है। इसीलिए हम स्नान तब कर सकते हैं यदि आधे घंटे में सभी लोग स्नान करके वापस आ सकें। सबको मंजूर है ये आइडिया? जैसे आपकी इच्छा हो, या तो आप पूरा स्नान कर सकते हैं या तीन बूंद डाल के स्नान कर सकते हैं।